आयत 110, फमन यामल सुअन, और जो कोई बुरा काम करे, हो गई हरकत, जान के नहीं की, हो गई बस, हो जाते हैं गुनाह, किए नहीं जाते। औ यस्लिम नफ्सा हो, या अपनी जान पर जुल्म कर ले, क्या जुल्म कर रहे, हर गुना जुल्म है, इन शिरक ला जुल्म नजीम, जो करना नहीं था वो कर लिया, करे क्या अब, सुम्मा यस्तग़फिरिल्लाह, फिर अल्लाह से बख्शिश तलब करे, क्या होगा, यजिदिल्लाह गफूर रहीमा, अल्लाह को पाएगा बहुत ही बख्शने वाला और मेहरबान। ये है एक द ओनली वन थिंग गलत काम करने के बाद कि जाके इस्तग़फार करो। आप देखें, कानून सिखाया जा रहा है ना, एक मुकदमा चल रहा है ना, गोया कि लॉ पढ़ाया जा रहा है, और बार बार बीच में इस्तग़फार, तौबा और अपने गुनाहों के इकरार कर लो। आज अगर दुनिया की सारी अदालतें यही तरीका इख्तियार कर लें, तो वो चोर का आखिरी चोरी का मुकदमा होगा, उसके बाद वो तौबा कर लेगा। कुरान ने इस खूबसूरत तरीके से लोगों को असूल दिए कि लोग उसके बाद गलत काम नहीं कर पाते। आप देखिए कि अल्लाह के नबी की ज़िंदगी में देखिए, कोई इक्का दुक्का वाक्य आ जाता था चोरी का, जैसे ये आ गया, कोई एक जिना का एक आता है, और वो सारे वाक्य मशहूर हैं हदीस की किताबों में, गम दिया औरत ने गुनाह किया, इसी तरह एक कबीले का मर्द था, उसने जिना कर लिया, और उनकी सारी बातें, क्योंकि जिना करती है एक औरत, हो गया जिना, अल्लाह के नबी के पास आ गई, अल्लाह के नबी आज नफ्स की रगबत में बात आगे बढ़ गई, अब क्या करो, आपने उसकी बात सुनी अनसुनी की, डोंट लुक एट हर, चलो अल्लाह के नबी मैंने जिना किया, मुझे हद लगा दें, क्या तेरे पास सबूत है, कहाँ सबूत है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, यानी जिना से प्रेग्नेंट हो गई, अच्छा तो क्या तेरे बच्चे का क्या कसूर है, जब बच्चा होगा फिर आना। आप नहीं उसकी बात सुनना चाह रहे, लेकिन क्या जज्बे थे उस दौर के लोगों के, कि गुनाह करने के बाद फिर वो गुनाह की तावीलात नहीं देते थे, सीधा अदालत में पहुंच जाते थे कि हमें हद लगा दे, क्योंकि आखिरत की सजा बड़ी दिखती थी। न्यू बॉर्न बेबी को लेके चंद महीने में आ गई, कहा तू मर गई तो इसे दूध कौन पिलाएगा, इसको दूध पिला, जब रोटी का टुकड़ा पकड़ लेगा ना फिर आना। और रिवायात में आता है कि चंद महीने का बच्चा, उसके हाथ में रोटी का टुकड़ा थमाए हुए वो औरत आती है कि अल्लाह के नबी देखें अब ये रोटी खाने लग गए, गुना सोने नहीं देता, मुझे हद लगा दे। अब अल्लाह के नबी ने उस औरत को फिर हद लगवाई, शादीशुदा थी तो रजम सजा थी, गड़ा खुदवाया गया और उसको उसमें खड़ा किया गया, जब उस पर पत्थर पड़े तो उसके जिस्म से खून का एक फवारा निकला, और खालिद बिन वलीद पास खड़े थे, उनके जिस्म पे कुछ कतरे गिर गए, जिना से कराहत की वजह से उनके मुंह से निकल गया, पलीद औरत जाते जाते मुझे भी गंदा कर गई, क्योंकि गुना से नफरत थी ना, ये नहीं कहा इट्स ओके, इट्स लाइफ स्टाइल, इट्स ओके। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि नहीं साहबी, इस औरत ने जो तौबा की है ना, दो तीन रिवायतें हैं जिसका खुलासा क्या है कि अगर 40 लोगों में, और एक जगह आता है कि अगर मदीना शहर के सारे लोगों में बांट दी जाए, तो इसकी तौबा की वजह से अल्लाह ताला सारे शहर को बख्श दे। ये है कि अल्लाह को पाएगा गफूर रहीम। इस तरीके से अल्लाह के नबी ने तज़किया किया था सहाबा का, इसी तरह एक मर्द ने जिना किया, वो अल्लाह के नबी के पास आ गए, इतनी अल्लाह के नबी ने उनसे छोटी छोटी बातें पूछी कि नहीं नहीं ये गुनाह नहीं किया होगा, ये किया होगा, कि साहबा कहते कि हमने कभी अल्लाह के नबी की जुबान से ऐसे अल्फाज नहीं सुने थे जो इस मुकदमे की तहकीक के दौरान आपके मुंह से निकले, क्योंकि आप उसको हद नहीं लगाना चाह रहे थे, लेकिन अगले ने इतराफ़ किया कि मैंने गलत काम किया। आप देखिए कि असल ये बात है, हम तो 100 गुना करके रात नींद भर के सोते हैं ना, उनको नींद नहीं आती थी, क्योंकि मैं यकसिविस्मन फ़ैन्नमा यक्सिबुहु अला नफ्सी, जो गुनाह कमाएगा वो तो अपने ही ऊपर कमाएगा, अपने खिलाफ हुज्जत है हर गुनाह, वकान अल्लाह अलीमन हकीमा, और अल्लाह खूब इल्म वाला, खूब हिकमत वाला है। आयत 111, करो गुनाह, मज़े करो, ऐश करो, मौज करो, मस्ती करो, देखना क़यामत के दिन पता लग जाएगा कि तुमने किया क्या था। आयत 112 साथ ही लेके देखें, फिर इस पर बात करेंगे। और ये देख रहे हैं आप सारे गुनाह कौन से हैं, आपने एक चीज़ नोट की है अभी तक के सबक में, जितने भी गुनाहों का तذکرہ है कोई एक भी हकूकुल्ला में से नहीं है, नमाज नहीं पढ़ी, रोजे नहीं रखे, हज नहीं दिया, ज़कातें नहीं दी, सारे के सारे हकूकुल इबाद हैं। हम किसी को रिश्ता देते हैं तो क्या देखते हैं, नमाजी, रोजेदार, हज, ज़कात। अच्छी बात है, ऑफ कोर्स जो सही नमाजी होगा, ये हो ही नहीं सकता कि वो सही शौहर ना और अच्छे हक ना दे। लेकिन आज जो दो जुदा कहानियां तो लिखती हैं। इबादत वाला दीन तो फौरन सोसाइटी में मारूफ हो जाता है, दाढ़ी सबको दिखेगी, टखनों सुची शलवार भी दिखेगी, लेकिन दीन से तड़प, दीन से मोहब्बत, दीन की तलब, ये थोड़ी फर्क होती है। बाज़ लोग नमाज, रोजे, हज में खुद इतने पक्के कि माशाल्लाह फर्ज के साथ सुन्नत नफिल नमाजें भी पढ़ेंगे, लेकिन इंसानी मामलात में सख्त जुबान होंगे, शक्की होंगे, वहमी होंगे। तो दुआ कीजिए कि दिल के मोमिन से वास्ते पड़े, जिनके दिलों में ईमान हो। अल्लाह ताला कहता है, वह मैं यकसिब खतीअतन, जो कोई खता करे, पहला लफ्ज नोट कर लें, खता, औ इस्मन, या इस्म करे, ये दूसरी तर्ज की चीजें हैं। सुम्म यर्मी भी, फिर उसके जरिए से तोहमत लगाए। यर्मी का रूट क्या होगा? उर्दू में इससे मिलता हो कि लफ्ज जहन में आया सुनते ही, रमी जमार, पत्थर मारना। तो रमी क्या होता है? किसी को पत्थर मारा। तो यर्मी भी ही बोहतान का पत्थर मारा, यानी जब हम किसी के ऊपर कोई ब्लेमिंग कर देते हैं तो वो ऐसे ही होता है कि जैसे हमने उसको पत्थर मार दिया, यानी खता की, फिर इस्म किया, फिर उससे भी बढ़ के तोहमत लगाई दूसरे पे। किस पे? बरीयन। बरीयन कौन है? उस शख्स पे जो इससे बरी है, बेगुनाह पे मुराद है। बरात मिन अल्लाह, ही सूरह तौबा का पहला लफ्ज, ये वही लफ्ज है जिसको शबे बरात के तौर पे हम 15 शाबान के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो बरीयन वो शख्स जो उस काम से बरी है, जिसने नहीं काम किया, जिसने ये सब किया तो उसका हाल क्या है? फ़क़द इहतमल बुहतानं व इस्मं मुबीना, तो इसने अपने सर पर एक बहुत बड़ा बुहतान और बहुत सरीह गुनाह का बोझ ले लिया। अब आप देखिए कि यहाँ गुनाहों की मुख्तलिफ किस्में दिख रही हैं, एक है खता, एक है इस्म, और फिर उसके बाद तीसरी है बुख्तान। थोड़ा सा इनका फ़र्क देख लेते हैं। खता और इस्म क्या होता है? अगर इंग्लिश में देखें तो सिंपल है, खता कहते हैं मिस्टेक को, करना नहीं चाह रहे थे, हो गई, ठीक है। और इस्म क्या है? सिन। कौन सा सिन? पता था फिर किया। खता कहते हैं अनजाने में कुछ गलत काम कर दिया, पता ही नहीं था ये इतना बड़ा गुनाह, सब कर रहे हैं तो हमने भी कर लिया, सब देखते हैं हम भी देख रहे हैं, सब सुनते हैं हम भी सुन रहे हैं, सब बातें करते हैं हमने भी कर ली, सब लड़कियां लड़कों से दोस्ती करती हैं हमने भी कर ली, और बाद में सोच लिया कि क्या हर्ज है, हमने तो शादी करनी है ना, पता ही नहीं था। लेकिन इस्म के जानबूझ के इन सारी चीज़ों की शिद्दत को महसूस करने के बावजूद ये काम करना। आसिमा अरबी जुबान में उस ऊँटनी को कहते हैं कि जो तेज चल सके और ना चले। तो यहां से देखिए, फिर इस्म वो गुनाह होता है जिससे बंदा बच सके फिर भी ना बचे। ठीक है, अब यहां इसमें बहुत सारी बातें, बस आप देखिए कि चोर का झूठी कसम खाना खता है, और इस्म से मुराद चोरी करके उसका इल्जाम दूसरे पे लगाना हो सकता है। यानी गुनाह के कई मुख्तलिफ दर्जे हैं, इस पे इतने लंबे अकवाल की लिस्ट है मेरे पास के सारे नहीं लिखवा सकूंगी, आपको ज़रूरत नहीं महसूस करती, बस आप अपने ऊपर लेके समझिए कि जिस गुनाह से बच सकती हूँ उससे भी बचना है, और जिससे नहीं बच सकती उस पे अल्लाह ताला से इस्तग़फ़ार करनी है। और ख़ास तौर पे फिर जब किसी के ऊपर आप बोहतान लगा दें, हाँ जी उसने किया है, मैंने तो नहीं कहा, उसने कर लिया, तो यहाँ से आपको ये चीज़ भी समझ आती है कि इस्लाम दूसरों के ऊपर अपनी गलतियों और अपनी खताओं का बोझ डालना इसको कितना नापसंद करता है। बस दफ़ा आप देखिए कि हम बेसमझी में, और मैं अक्सर सोचती हूँ कि अगर हम सिर्फ 1 मिनट सोचने का टाइम लेके बोलें तो उसमें से आधी बातें बोलें, किसी से पूछे भी नमाज नहीं पढ़ी, वो बच्चों ने नहीं पढ़ने दी, इनके काम ही नहीं ख़त्म होते, ये मियाँ ने फिर चाय का कह दिया, और ये इन्होंने और कुछ ना समझ आया ना किसी का इल्ज़ाम, तो कहते हैं इन सब ने मेरी मत मरी हुई है, इन्होंने मुझे भुला दिया। हर मौके पे बिला समझे जो हम रिएक्ट फौरी करते हैं ना, वो अपना मुर्दा दूसरे के सर पे डालते हैं, और बस लोगों का तो हाल यह कि दूसरों को नीचे लताड़ें और उन पे खड़े होकर अपना कद ऊंचा करें कि हम बड़े नेक, मैं बड़ी अच्छी, मैं बड़ी नेक, मैं, और दूसरे मेरे इर्द गिर्द तो सारे मेरे जो हैं वो गुनाहगार हैं। ये अल्लाह को बिल्कुल भी बात पसंद नहीं है। इंसान इससे अपने आप को बहुत महफूज रखे, क्योंकि आदत पड़ जाती है और इंसान फिर इन चीज़ों के ऊपर आता है। غلط چیزوں کی بات ہے. اور آپ دیکھیے کہ خاص طور پہ یہاں جو بہتان کی بات ہے تو حدیث میں آتا ہے صحابی سے کہ اللہ کے نبی جب ہم کسی کی برائی کرتے ہیں تو وہ بات تو اس میں ہوتی ہے, تو پھر آپ اس کو غیبت کیوں کہتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ دوسرے میں یہ بات ہے تبھی تو یہ غیبت ہے. غاب غیب, غائب سے ہی ہے نا کہ وہ غائب ہے جس کی بات آپ نے کی. اگر وہ بات جو اس میں نہیں ہے اور تم نے کہی ہوتی تو یہ تو اس سے بڑھ کے بہتان ہو جاتا. اور آپ کہتے ہیں کہ کوڑوں میں, بہتان اور زنا کے بیچ میں صرف 20 کوڑوں کا فرق ہے. زنا کرنے کرانے والے کو 100 کوڑے اور اس پہ صرف ایک الزام لگانے والے پہ 80 کوڑوں کی سزا. اسلام زبان کی اتنی حفاظت سکھاتا ہے. یقین کیجیے جہنم کے اندر اوندھے منہ گرانے والی چیز زبان ہے. کثیر تعداد جہنم میں زبان کی وجہ سے جائے گی. ساری نمازیں روزے ہاتھ میں پکڑا دیے جائیں گے اگر ہماری زبان صاف نہ ہوئی, بولیے نہ, خاموش رہیں تو بہتر ہے. اور جب یہ موضوع بندہ پڑھتا پڑھاتا ہے دل کرتا ہے کسی ایسی وادی میں چلے جائے جہاں کوئی دوسرا بندہ نہ ہو, جس کے ساتھ کوئی میرا معاملہ ہو, میں اور میرا رب, اس کو خوش کرتے رہیں, اس کی مانتے رہیں اور عبادت کرتے رہیں. انسانوں کی عدالت بڑی شدید ہے, قنطرہ پہ جا کے روکے گی آپ کو, مجھے کئی دفعہ سنا چکی ہوں. جنت میں جانے سے پہلے آخری دیوار جو ہے وہ حقوق العباد کی ہے. اب آج دنیا میں بیٹھ کے فیصلے کر لیں, اور بچ نہیں سکتے انسان ہونے کے ناطے نا, تو خود کو مصروف کر لیں. آپ دیکھیں یہ 4 دن جو آپ کی کلاس کے ہوتے ہیں نا, مجھے یقین ہے کہ اس کے بعد کچھ نہ کچھ قرآن کا اثر رہتا ہے. ٹائم بھی نہیں ہوگا, تھکن بھی ہے کچھ بھی, اور اسپرچویلٹی بھی رہتی ہے. آپ اپنے ایک ویک کے معمولات کو چیک کر کے دیکھیں کہ جو 3 دن بیچ میں ہم محروم ہوتے ہیں نا, ہم ان دنوں میں ہمارے بولنے اور ہماری سوشلائزنگ کے نام پہ غلط چیزوں کے کرنے کی سپیڈ ان سے بڑھ نہیں جاتی. جتنا زیادہ اپنے آپ کو کھپا لیں گے اتنے سیکیور ہیں, ادروائز آپ دیکھیں گے کہ فائدہ نہیں ہوگا. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ ہم بولتے ہیں. اللہ کے نبی کی ایک روایت ہے, صحابی نے کہا اللہ کے نبی مجھے دین کی بنیادی باتیں بتا دے, تو آپ نے بتایا نماز, روزہ, حج. پھر کہا کہ تیرا رات کو جاگنا, یعنی تہجد کی بات کر دی. پھر صحابی سے کچھ بات کرتے ہوئے آپ نے بات کو تھوڑا آگے بڑھایا کہ اسلام کی بنیاد کیا ہے, راسل اسلامی, رات کو جاگنا, اور نماز جو ہے دین کا ستون ہے, اس کی ذروہ جو ہے وہ جہاد ہے. خیر کی باتیں کرتے ہوئے آخر میں اللہ کے نبی نے یوں کیا, یہ دیکھیے, اپنی زبان کو پکڑ لیا اور پھر آپ نے فرمایا کہ اس کو روک کے رکھ. صحابی نے کہا اللہ کے نبی جو ہم بولتے ہیں کیا اس پر بھی ہماری پکڑ ہوگی؟ تو آپ نے فرمایا تیری ماں تجھے گم پائے, یعنی ایک محاورہ تھا پیار کر بھی کا, تیری ماں تجھے گم پائے, جہنم میں اوندے منہ گرانے والی چیز ہی تو یہ ہے. حسائد کا لفظ آتا ہے عربی میں, حسد, آپ پڑھیں یوم الحسادی ہی پڑھ چکے ہیں, کاٹنے کے دن, ہارویسٹنگ کے دن. اس زبان کو حسائد کہتے ہیں, کاٹ دے گی کینچی کی طرح. حدیث میں آتا ہے کہ تمہیں بتاؤں کہ نیکیوں کو مونڈ دینے والی چیز کیا ہے؟ مونڈنا سمجھتے ہیں نا, شیو کر دیتی ہیں کچھ چیزیں, وہ آپس کا اختلاف ہے. نماز روزے نیکیوں کو مونڈ کے رکھ دیں گی, شیو کر کے رکھ دیں گی یہ ہماری آپس کی بدمزگیاں, کیونکہ اس میں انسانوں کا انسانوں سے تعلق ٹوٹتا ہے. پھر آپ دیکھیے کہ جو تہمت لگتی ہے وہ اتنا بڑا گناہ کیوں ہے؟ کیونکہ اس کا تعلق زبان سے بھی ہے, آنکھوں سے بھی ہے, ہاتھوں اور کانوں کا کوئی اتنا ذکر آپ دیکھیں کہ الگ بھی ہو, لیکن سب سے جو بنیادی کردار ہوتا ہے تہمت میں وہ کس کا ہوتا ہے؟ زبان کا ہوتا ہے. آنکھوں سے دیکھ بھی لیا ہے, کچھ کر بھی لیا, اگر آپ کی زبان نہیں بولے گی تو تہمت نہیں ہے. تو اس دروازے کو بند رکھیں, زپ ٹائم, خاموش رہو, سائلنٹ ٹائم, اپنی عادت بنائیں بچوں کے ساتھ گھر میں. 9 سے 9:30 کوئی نہیں ٹاک کرے گا, خاموشی کا وقت ہے, غور کرو. جب ہم چپ رہتے ہیں نا تو ہم غور کر رہے ہوتے ہیں, اور جب ہم بول رہے ہوتے ہیں تو دوسرے ہم پہ غور کر رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو یہ لگ کیا رہا ہے. عقل مند تو ہماری باتیں سن کے ہمیں بیوقوف ہی کہتے ہوں گے. ہم سوچ رہے تھے لوگ بڑے خوش ہو رہے ہیں, وہ اپنے اندر کے پھپھولے ہم اگل رہے ہوتے ہیں, اچھے لوگوں کو ہم اچھے نہیں لگ رہے ہوتے. ہاں, جو ہماری اس بات میں ہاں میں ہاں ملائیں, آپ سمجھ لیں کہ وہ بھی ہم جیسے ہی ہیں, نہ بولیں نہ سنیں. کسی کا مسئلہ حل کرنا ہے, کسی کی سیدھی بات ہے, ٹو دی پوائنٹ ہے, حقائق پہ مبنی ہے, بغیر کسی کے نام لیے دیے اشارتاً کسی دوسرے کی بات کر کے تھرڈ ورڈز میں سمجھ لیں, اور دیٹس اٹ. رگڑا نہ دیں, उठते बैठते जागते बालते ये वो करना, ये सब कुछ जो है ये इंसान को क़यामत के दिन के बोझ की सूरत में मिलेगा। आप देख ली कि इहतमल का लफ्ज़ है और हमल बोझ को कहते हैं। क़यामत के दिन हमारे ये गुनाह मुजस्सम बना दिए जाएंगे, इनको बॉडीज दे दी जाएंगी, घोड़े बकरियाँ कानों के, और वो कंधों पे ऊपर से ऊपर होंगे। किसी ने एक बैल उठाया हुआ है, किसी ने एक बकरी, किसी के ऊपर लाइनों की लाइनें लगी हुई हैं। क्या ये वो बातें हैं जो हम दुनिया में दूसरों के लिए करते थे? कल कोई मेरा और आपका बोझ नहीं उठाएगा। अल्लाह ताला हम सबको सेल्फ कंट्रोल दे। मुझे ऐसे गाड़ी चलाते हुए जब किसी को देखती हूँ, और आपने देखा होगा कि एकदम उसको हैंड ब्रेक लगानी पड़ती है, कभी कभी ऐसा हो जाता है ना, तो मैं जब भी किसी को हैंड ब्रेक लगाता दिखाऊँ तो मुझे ज़ुबान याद आती है कि इस गाड़ी को रोका है ना एकदम हैंड ब्रेक। तो इंसान के अंदर इतना सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए उसकी, इंसान की गाड़ी में, कि जब चाहे हैंड ब्रेक लगा ले अपनी ज़ुबान को, मैं नहीं बोलूंगी। और अंदर से जो उबाल उठ रहे होते हैं ना, ये बात तो मैंने बतानी है, ये तो ज़रूर बताऊंगी, ये तो करनी है, ये तो वो। लेकिन आप देखिए कि अगर आप एक दो दफ़ा की एक्टिविटी से अपनी बात दिल में रख गए ना, तो इंशाल्लाह आपके अंदर फिर एनर्जी पैदा हो जाएगी। और ये जो लफ्ज़ बुहतान है ना, बुहिता से होता है, बाहाता, पीछे भी बताया था, फबुहित अल्लज़ी कफर, यानी जिस पर इल्ज़ाम लगाया जाता है वो उसको सुन के हैरान ही हो जाता है कि देखो इसने मेरे ऊपर इतनी बड़ी बात कर दी और मैंने तो ये बात की नहीं थी और इसने मेरे ऊपर ये इल्ज़ाम लगा दिया। अब आप देखिए कि यहाँ तक तो हम सब की करेक्टर बिल्डिंग की। अब लोग कहते हैं जी करेक्टर बिल्डिंग करवाएं, मैं कहती हूँ कि करेक्टर बिल्डिंग के लिए कुरान पढ़ाएं, लेकिन वो कुरान पढ़ाएं जो झूठी तसल्लियाँ दिलवाने वाला ना हो। मुझे बड़ी हैरत होती है, अपने ऊपर भी होती होगी जब मेरे साथ ऐसा होता होगा, और दूसरों पर भी। कुरान पढ़े पढ़ाए हुए लोग, कई कई साल खिदमत कर रहे, एज आ खिदमतगार कई कई जगहों में काम कर रहे हैं, उनके बीच में भी गड़बड़े हों, उसमें से भी एक साथी दूसरे के बारे में गलत कहे या कोई आपके बारे में कुछ कहे, तो आप सोचें कि इसने तो मेरे पे इल्ज़ाम ही लगा दिया। मुझे बड़ी हैरत होती है, कभी कहीं इतफाक़ हो किसी जगह देखने का तो मैं सोचती हूँ ये कौन सा कुरान है जो आपने पढ़ा। हम भी तो यही पढ़ते पढ़ाते हैं, जिसके बाद इंसान को गम लग जाता है कि अल्लाह मेरे से कोई ऐसा काम ना करा लेना कि जिसके बाद मैं तेरी नज़रों से गिर जाऊं। तो अल्लाह ताला से बड़ी दुआ करें आजजी के साथ। इसमें जितनी आजजी लेके आएंगे आप देखेंगे उतनी किरदार की ये खराबियां निकलेंगी कि मैंने अपने आप को बेज़रर करना, ला दरर वला दिरार, ये कोडवर्ड बना लें, हदीस के अल्फाज हैं, ला दरर, ना तुम किसी को तकलीफ दो, वला दरार, और ना कोई तुम्हें दे। माफिया मांगे जाके अपने घरों में जाके अपने रिश्तेदारों से, वरना याद रखिए क़यामत के दिन बड़ा सख्त मामला आने वाला है। अल्लाह ताला अपने नबी को कहते हुए हम सबको एहसास दिलाते हैं आयत 113 में, वलौला फ़ज़लुल्लाहि अलैका व रहमतुहु, और ऐ नबी अगर अल्लाह का फजल और उसकी रहमत आपके शामिल हाल ना होती, लहम्मत ताइफतुम मिन्हुम अन युदिल्लूक, तो इन मुनाफिकों के गिरोह ने तो इस चीज़ का इरादा ही कर लिया था कि आपको गुमराह कर दें, यानी उन्होंने तो झूठी सच्ची सुना के आपको अपना हम ख्याल करना चाहा था ना। लेकिन वमा युदिल्लूना इल्ला अन्फुसहुम, और हकीकत में वो नहीं गुमराह करते मगर अपने आप को, वमा यदुर्रूनका मिन शैइन, और वो आपको कभी भी कुछ नुकसान नहीं पहुँचा सकते। क्यों भला? इसलिए कि जो ही कोई आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है तो हम आपके ऊपर वही उतार देते हैं। कैसे? वंज़लल्लाहु अलैकल किताब वल हिक्मा, और अल्लाह ने आप पर किताब और हिकमत नाजिल की है, वअल्लमका मा लम तकुन तअलम, और आपको वो कुछ सिखाया है जो कि आप नहीं जानते थे, और ये वकाना फ़ज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा, और यकीनन अल्लाह का फ़ज़ल आप पर बहुत बड़ा है। बड़े ख़ूबसूरत तरीके से अल्लाह ताला ने एक बड़ी ख़ूबसूरत बात हम सबको सिखा दी, और वो क्या है कि लोग आपको बहकाना भी चाहेंगे नहीं बहका सकते, शर्त क्या है कि आपके पास इल्म और हिकमत हो। यहाँ बाप की बात हो रही है, आप इल्म की महफ़िल से जुड़े रहें, लोगों की चालें आपको नहीं नुकसान देंगी। लोग जितनी मर्जी कोशिश कर लेना आपको अपना हम ख्याल बनाने की, आप उनके हम ख्याल नहीं बनेंगे, क्योंकि अल इल्म वल हिकमा, जिस दिन इल्म से साथ छूटा, हिकमत भी चली जाएगी, और जब ये दोनों चले गई तो सारे बाहर के जरासीम आपको चिपक जाएंगे, आप फिर उनकी बातों के फंदों में फंस जाएंगे। यकीन करें कि ये एक शील्ड है कुरान और हिकमत की जो हमारे इर्द गिर्द है। आप कहते हैं इल्म लेने आए आए हुए तो आप सब इल्म लेने हैं ना, चंद साल अगर इस रास्ते में सबर कर जाएंगे तो हिकमत लेके जाएंगे, क्योंकि इल्म से खौफ मिलता है और खौफ से हिकमत मिलती है। हदीस का खुलासा, रासुल हिकमती मखाफतुल्लाह, हिकमत का सर या उसकी असल अल्लाह का खौफ है। और कुरान जितना अल्लाह का खौफ दे देता है उतना तो खौफ कोई नहीं दे सकता। आप चाहते हैं कि अल्लाह आपको हिकमत दे तो जुबान को खामोश रखें और गौर व फिक्र तदब्बर को आदत बना लें। आप देखेंगे किसी का आपके ऊपर बस नहीं चलेगा। हम सब बहुत बड़े खतरों से निकल के इधर आते हैं ना, कौन से? आप कहेंगे वो गाड़ियां खतरे में होती हैं, इधर से उधर से हाईवेज हैं, कई जगह एक्सीडेंट हो सकता है ना, गाड़ी जरा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, आपका कसूर नहीं भी होगा तो दूसरों का हो जाएगा, नतीजा एक ही है, कसूर किसी का भी हो मरने वाला मर ही जाता है। लेकिन इससे बड़े खतरों से हम उस वक्त निकल के आते हैं जब हम इंसानों की भीड़ में से निकल कर आते हैं। खुद से पूछिए, अगर इस वक्त मैं यहां ना बैठी होती तो किधर होती? कहीं भी आप होती ना, चले सो रही होती तो हो सकता है कि सोने की वजह से अमाल नहीं लिखे जाते, जाग रही होती तो बहुत खतरे में होती। फोन टॉक, गुफ्तगू, बाजार, विंडो वॉचिंग, कहीं भी आप देखिए ना, इस वक्त तुम अल्लाह ताला की किताब को समझना चाह रहे हैं ना, ऐसा अमल तुम कभी भी ना कर रहे होते। अगर ये अमल ना करते तो इंसानों के मामले में तो इंसान से ज्यादतियाँ हो जाती हैं, कभी निगाह भटक जाती है, कभी सोच भटक जाती है, कभी कुछ कभी कुछ। तो अल्लाह ताला हम सबको यहाँ बता रहा है कि अपनी इसलाह कर लो। यहाँ पे इस आयत का एक एंगल उस वाक्य के नाते से पूरा हुआ, लेकिन ये अल्लाह ताला का कलाम है समंदरों गहरा, कि जो एक चीज में से कितना कुछ निकाल के दिखाता है। अभी तक बात नहीं भूली ना, बात पूरी हुई है, हम सोच रहे हैं बात पूरी हो गई है लेकिन बात पूरी नहीं हुई। इसको बुनियाद बनाते हुए अब अल्लाह ताला कुछ इज्तमाई जिंदगी के कवानीन सिखा रहा है, क्योंकि नबी सल्लम की हैसियत मदीना में एक लीडर की थी। इन्होंने लीडर को डॉच करने की कोशिश की, धोखा देने की, ताकि हम किसी के खिलाफ बात करें, हम बच जाएं वो फंस जाए, लेग पुलिंग कह लें। इसलिए अब इसे अगली चंद आयतों में हमारे लिए इंशाल्लाह थोड़ा सा डिफरेंट एंगल होगा, लेकिन सारा कुछ हम सभी के लिए है।